हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनाही ने आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। काशी को फ़ोन मिलाते हुए वो उससे बातें करने लगी। वो तिरछी नज़रों से रूहान को देख रही थी, जो कुछ पल तो ग्लास डोर के पास खड़ा रहा, लेकिन फिर हल्का गुस्सा करते हुए अंदर आ गया। वो बेड पर बैठा और फिर तकिए को अपनी गोद में रखकर अपना माथा पकड़ते हुए बोला, अगर इतना ही एटीट्यूड है आपके अंदर तो मेरे अंदर भी कम नहीं है। आपको बात नहीं करनी है, मत करो, मैं भी नहीं करूँगा। बस एक थोड़ी सी करुणा दिल में थी कि बीमार इंसान को मेरी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इंसान की हरकतें ऐसी हैं तो परेशानी हो, भले भाड़ में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वो शुगर के कमरे में चला गया। उसने टीवी ऑन की जिसमें शुगर के फेवरेट कार्टून चल रहे थे। उन्हें देखते हुए अब वो पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था खुद को अनाही से बाहर निकालने की, लेकिन अनाही जैसे उसके दिल और दिमाग में बस चुकी थी। वो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। देखते देखते दोपहर से शाम भी हो गई। रूहान जब थक गया एक्टिंग करके एटीट्यूड की, तो वो कमरे से बाहर आया। उसने एक उम्मीद भरी नज़र बालकनी में डाली तो पाया कि बालकनी तो खाली है। उसने झट से बाथरूम की तरफ देखा, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला था। फिर वो तेज कदमों से चलते हुए बाहर चला गया। बाहर हॉल में भी बाकी सब थे, लेकिन अनाही नहीं। पर रूहान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से पूछ ले कि अनाही कहाँ है। वहीं रूहान को ऐसे बेचैन घूमते देखकर निवेदिता भी परेशान हो गई। वो फोर्स से पूछना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन शायद रूहान उसके बात सुनकर तो हॉल से भी चला जाएगा। बस यही सोचकर निवेदिता ने खुद को कंट्रोल कर लिया, लेकिन माधवी ने उसे 5 मिनट बाद ही कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? रूहान ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं ताई जी, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। एक्चुअली मैडम जी नहीं मिल रही हैं, वो कहाँ गई हैं? मुझे उनसे कुछ पूछना था और रूम में मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। निवेदिता ने झटके से कहा, वो गार्डन में टहल रही है। माधवी ने गुस्से से निवेदिता की तरफ देखा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूहान और अनाही ज्यादा साथ में टाइम स्पेंड करें। अनाही बालकनी में सोती है ये माधवी को पता चल चुका था, इसलिए वो रूहान और अनाही की तरफ से बेफिक्र थी, क्योंकि उनके बीच तो कोई रिश्ता वैसे भी नहीं बनने वाला है। वहीं रूहान तेज कदमों से बिना किसी और की बात सुने बाहर चला गया। उसने गार्डन में देखा जहां हरी घास पर पैरों को रगड़ते हुए अनाही चल रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था जिसे वो स्क्रॉल कर रही थी। शायद काशी का फ़ोन कट चुका था और अनाही अपना मूड बदलने के लिए रील्स देख रही थी, लेकिन वो रील्स उसका मूड बदलने की बजाय खराब कर रही थीं। उसके सामने बार बार क्यूट क्यूट कपल्स की रील्स आ रही थीं। आखिर में अनाही ने फ़ोन बंद किया और फिर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर आसपास के फूलों को देखते हुए बोली, सबकी ज़िंदगी में ये वाला रंग है जिसे प्यार कहते हैं। मेरे टाइम पर कलर खत्म हो गया था क्या भगवान जी? घर पर भी यही जिम्मेदारी, यहाँ भी यही जिम्मेदारी है। घर का बड़ा बच्चा क्यों जिम्मेदारी में पीस कर रह जाता है? उसकी अपनी भी तो जिंदगी होती है। मैं तो सुकून की तलाश में इस घर में आई थी, लेकिन यहाँ आकर लगता है जो परेशानी घर में थी उसकी 100 गुना परेशानी यहाँ है। वहाँ सिर्फ बड़ी बेटी का फर्ज निभाना था और यहाँ बड़ी बहू का फर्ज, जिसमें जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी बेटी एक बार अगर फेल भी हो जाए तो माँ बाप उसे माफ कर देते हैं, उसे दूसरा मौका दे देते हैं, लेकिन ससुराल में अगर बड़ी बहू फेल हो जाए तो उसकी सास, उसके ससुराल वाले और उसका पति, इनमें से कोई भी उसे दूसरा मौका नहीं देगा। और यहाँ तो मेरे पहले मौके में ही इतना सारा रायता खेला हुआ है, कैसे कुछ करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूर से रूहान कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो उसके करीब आया और फिर धीरे से बोला, मैडम जी। उसकी आवाज़ सुनकर अनाही ने झट से पलटकर उसकी तरफ देखा तो रूहान ने अपना थूक निगलते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है आपकी? फ़ोन करके पूछ रही थी उनकी दवाइयों का असर हुआ या नहीं। अनाही कुछ बोलने वाली थी कि इतने में उसे छींक आ गई। रूहान ने जवाब ना मिलने पर ठीक नहीं दे दिया था कि अनाही की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अनाही ने फिर रुमाल से अपनी नाक पोंछते हुए कहा, थोड़ा बहुत सुधार है, मेरे गले का दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ और रात को दवाई लूँगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। इतना बोलकर अनाही फिर पलट गई और आगे की तरफ बढ़ गई। रूहान भी उसके कदमों से कदम मिलाते हुए उसके साथ चलने लगा, जिसे देखकर अनाही ने चिढ़ते हुए कहा, अब आपको क्या चाहिए? मुझे गार्डन में इतनी सारी जगह है ना, उधर घूम लीजिए आप। रूहान ने कुछ पल तो खामोशी से अनाही के खूबसूरत गोरे पैरों को घूरा, जो बिना चप्पल के हरी घास में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे, और फिर अनाही की तरफ देखकर आंखें छोटी करते हुए बोला, ये मेरे घर का गार्डन है मैडम जी, तो आप मुझे मना नहीं कर सकती कहीं भी घूमने के लिए। मेरा मन है कि मुझे यहीं घूमना है, तो मैं यहीं रहूंगा, दूसरी तरफ क्यों जाऊंगा। अनाही ने घूर कर उसे देखा और फिर खुद पलटते हुए दूसरी तरफ चली गई और फिर भुनभुनाते हुए बोली, एक नंबर का अकड़ू, जिद्दी, गुस्सैल और बदतमीज आदमी है, क्या करूँ मैं। वो जैसे ही दूसरी तरफ आई थी, रूहान भी उधर ही मुड़ गया। कुछ ही पलों में उसने दोनों के बीच का फासला खत्म कर दिया था और उसके कदमों से कदम मिलाकर चलने लगा था। अनाही ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो आपका मन उधर घूमने का कर रहा था, आपका मन तो बड़ा जल्दी बदल गया, मेड इन चाइना है क्या जो इतनी देर ही टिकता है। रूहान ने शान से चलते हुए कहा, मेड इन जापान टाइप है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड, टाइम टाइम के हिसाब से चेंज होता है। अनाही का मन किया कि वहाँ रूहान का गला दबा दे। वो शांति से सांस लेने आई थी, लेकिन रूहान यहाँ भी उससे लड़ने पहुँच चुका था। रूहान और अनाही दोनों ने गार्डन के पूरे 5 चक्कर लगा दिए थे एक दूसरे से लड़ते हुए। कभी अनाही रूहान को इधर घूम रही थी तो कभी उधर घूम रही थी। दूर से निवेदिता उनकी ये बच्चों वाली फाइट देखकर बहुत खुश हो रही थी और उनकी बलाएं लेते हुए उन्हें नजर न लगने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं अनाही जब रूहान की हरकतों से थक गई तो फिर घर के अंदर आते हुए बोली, अब घूम लीजिए, पूरा गार्डन खुला पड़ा है आपको, जहाँ घूमना है वहाँ घूमिए। रूहान भी सिर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अनाही ने जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनी, वो रुक गई और फिर मुड़कर रूहान को देखा। रूहान, जो नीचे गर्दन करके आ रहा था, वो एकदम से अनाही से टकरा गया। इसके अगले ही पल अनाही गिरने वाली थी। रूहान ने अपनी दोनों बाजुओं को उसकी कमर पर रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया और फिर उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मैडम जी, थोड़ा संभल कर, इस तरीके से गिरती रहीं तो बार बार मुझे आपको छूने का बहाना मिल जाएगा। अनाही की तो जैसे सांस ही रुक चुकी थी, उसे रूहान के परफ्यूम की स्मेल बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। उसने रूहान के सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करके बोली, तो अपने हाथों पर काबू रखें, अगर गिर भी गई तो हाथ पैर टूटे हुए भी प्लास्टर से जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपका छूना इसी तरह बढ़ता रहा और फिर एक दिन मेरा दिल टूट गया तो वो पूरी जिंदगी वापस नहीं जुड़ पाएगा, तो मैं गिर जाऊँ तब आपको मुझे संभालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उठ जाऊंगी और अपने कपड़ों से मिट्टी पोंछ लूंगी। आपके प्यार में गिरकर अगर मेरे कैरेक्टर पर थोड़ी सी भी मिट्टी लग गई तो मैं उसे पोंछ नहीं पाऊंगी। आई होप आप मेरी सारी बात समझ रहे होंगे।
रूहान नादान जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि ये बात को न समझ पाए। वो तुरंत समझ चुका था कि अनाही उसे क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस अनाही से दूर हो गया।